नमस्कार प्रिय श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आप सब आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। प्रिय श्रोताओं, हमें जानकर बेहद खुशी हो रही है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से पहला इतिहास नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, विशेष करके उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इन दिनों हम बाइबल की पुस्तक में से पहले इतिहास की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पहले इतिहास की पुस्तक 14 अध्याय उसके 16 पद से लेकर के 16 अध्याय के 8 पद तक। पहले इतिहास की पुस्तक 14 अध्याय और उसके 16 और 17 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया और इसराइलियों ने फिलिस्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गेजेर तक मार लिया। तब दाऊद की कृति सब देशों में फैल गई और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। जी हाँ, यही कारण है कि मैंने दाऊद को संसार के महान अगुओं में गिना है। उसका राज्य अपने युग के महान राज्यों में से एक था। परमेश्वर उसके साथ साथ था। उस महत्वहीन स्थान में वह छोटा सा राष्ट्र एक महान विश्व शक्ति बन गया था। हमें यह बात विचित्र प्रतीत न हो, वेनिस एक नगर था, परंतु किसी समय वह विश्व पर राज्य करता था। अतः इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि इसराइल विश्व शक्ति था। इसका कारण भी हमें बताया गया है। पद 2 में लिखा है कि दाऊद को निश्चय हो गया था कि परमेश्वर ने उसे इसराइल का राजा नियुक्त किया है, और पद 17 में लिखा है कि परमेश्वर ने सब जातियों में उसका व्याप्त कर दिया। परमेश्वर ही था जिसने दाऊद को विश्व शक्ति बनाया था। मेरे मित्रों, हम देख चुके हैं कि अध्याय 13 से 16 में दाऊद और वाचा के संदूक के विषय में लिखे गए हैं, अर्थात दाऊद के चयनित स्थान यरूशलेम में वाचा के संदूक का लाया जाना। यहाँ रोचक बात तो यह है कि ये अध्याय हमें राजकीय कार्यकलापों का ब्यौरा, दाऊद के निर्णय, पड़ोसी राज्य के साथ समझौता, युद्ध, राजकीय भोज और अन्य राजकीय कार्यक्रम जैसे कि आज टीवी पर समाचार दिए जाते हैं आदि का ब्यौरा देने की अपेक्षा वाचा के संदूक के परिवहन का वर्णन करते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ हमारे लिए शिक्षा की बात यह है कि हम समझे कि परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण क्या है। आज हम जितना भी समाचार प्रसारण सुनते हैं, बड़ी बड़ी बातों को सुनते हैं, तो उसके बारे में परमेश्वर का क्या विचार होगा? क्या परमेश्वर भी उसी बात को महत्व देगा जिसे हम महत्व देते हैं? परमेश्वर किस बात को महत्व देता है? हमें वाचा के संदूक के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करने से शिक्षा लेनी है कि परमेश्वर अपने लोगों की आराधना में रुचि रखता है। वाचा का संदूक इसराइल की आराधना का केंद्र था। परमेश्वर इसी बात को महत्व देता है। मेरे मित्रों, इतिहास से ही हमें शिक्षा मिलना चाहिए कि हम प्रायः टालने वाले कामों को महत्व देते हैं। एक समय फ्रांस के पेरिस नगर में नेपोलियन के महल में कर्मचारियों को काम से विश्राम नहीं मिलता था, परंतु आज वह महल संग्रहालय है। आज वहां कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जाता है। हम वर्सेलेस की सुंदरता को स्मरण करते हैं। पूर्व काल में वह कैसा महत्वपूर्ण स्थान था। वह बड़े एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे, परंतु आज वह केवल पर्यटकों के लिए देखने का स्थान है। उस युग में यदि सोचा जाता कि परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण क्या है तो अच्छा होता। जी हाँ, एक और प्रश्न है, मिलाप वाले तंबू का क्या हुआ? मेरे विचार में वह पुराना हो गया था। वह कपड़े का बना एक तंबू था, उसमें से सोना चांदी और पीतल तो शायद पलिस्तियों द्वारा लूट लिया गया था। वाचा के संदूक की अपेक्षा मिलाप वाले तंबू का वर्णन नहीं है। महत्वपूर्ण वस्तु वाचा का संदूक थी। क्यों? क्योंकि वाचा के संदूक पर दया का आसन था। यह वह स्थान था जहां परमेश्वर अपनी प्रजा से भेंट करता था। मेरे प्रिय मित्रों, आपके और मेरे लिए भी महत्वपूर्ण बात यही है कि हमारे पास एक ऐसा स्थान हो कि वहां हम परमेश्वर की दया प्राप्त कर पाए। हम सबको परमेश्वर की दया की आवश्यकता है। आज परमेश्वर हम पर दया बरसाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास दया का आसन है। पहला यूहन्ना के पत्री 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक ऐसा सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। ध्यान दीजिए, प्रायश्चित का अर्थ है दया का आसन। मसीह हमारे पापों के लिए दया का आसन है। परमेश्वर के लिए यह महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों, आप और मैं टीवी पर जो सुनते हैं या सरकार के निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है। मैं उन्हें तुच्छ नहीं कहता, परंतु महत्वपूर्ण तो है कि परमेश्वर के निर्णय को हम सुने और माने। दाऊद ने वाचा के संदूक को यरूशलेम लाने का जो एक उचित काम किया था, परंतु उसका तरीका गलत था। अब यरूशलेम का चुनाव दाऊद का ही नहीं परमेश्वर का भी था, अतः वाचा के संदूक का यरूशलेम लाया जाना आवश्यक था। समस्या यह थी कि दाऊद ने उसकी परिवहन विधि गलत अपनाई। परमेश्वर ने गिनती की पुस्तक में निर्देश दिए थे कि वाचा के संदूक को लेवी वंशी कहातियों के कंधों पर जाना था। अन्य कोई विधि उचित नहीं थी। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन का प्रचार आज आसान नहीं है। अधिकांश सेवकों का सोचना है कि प्रचार करना पिकनिक या मनोरंजन किसी बात है। जी नहीं, यह ऐसा नहीं है। यह जानना कि कोई परमेश्वर से प्रेम करने के कारण उसकी इच्छा पूर्ति में सेवा करता है निश्चय ही परमानंद की बात है, परंतु आसान काम नहीं है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों द्वारा ही प्रचार किया जाना है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर अपने वचन के प्रचार पर आशीष देता है। पौलुस कहता है कि मनुष्य के लिए वचन सुनना आवश्यक है, परंतु प्रचारक बिना यह संभव कैसे होगा। वह यह भी कहता है कि 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय के 18 पद में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर चाहता है कि मानव परिवार मानवीय साधन द्वारा ही वचन सुने। वह आकाश में नहीं लिखता है, वह हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसका प्रचार करें। मेरे मित्रों, हम अपने चारों ओर अशांति देखते हैं। परमेश्वर के वचन से भटकी हुई कलीसिया अन्य किसी भी संस्था के सदृश्य अव्यवस्था की दशा में है। वे परमेश्वर की रीति अनुसार काम नहीं कर रही है। मेरा अटल विश्वास है कि वाचा का संदूक सुसमाचार गतिमान हो जाए, अर्थात परमेश्वर का वचन मानव जाति में सुनाया जाए। तो मित्रों, आइए हम उसी बात को महत्व दे जिसे परमेश्वर महत्व देता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 14 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 15 में देखेंगे दाऊद सही रीति से वाचा के संदूक को लाता है। प्रिय मित्रों, हमने देखा था कि दाऊद के मन में परमेश्वर के लिए श्रद्धा थी, अतः वह वाचा के संदूक को परमेश्वर के चुने हुए स्थान यरूशलेम में लाना चाहता था, परंतु सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर द्वारा दिए गए वाचा के संदूक के परिवहन निर्देशों का पालन नहीं किया था। परंतु इस बार वह ऐसी गलती नहीं करेगा और वाचा का संदूक सम्मान पूर्वक बड़े उल्लास के साथ यरूशलेम आएगा। तो आइए हम पढ़ें पहले इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। जी हाँ, परमेश्वर वाचा के संदूक के लिए स्थान की तैयारी को महत्व देता है, न कि दाऊद की आवासीय परियोजना को। ध्यान दीजिए, तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए, ये उसकी आवासीय परियोजना थी, जो निश्चय ही बहुत लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात थी। हम आगे पढ़ते हैं पहले इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाएं और उसकी सेवा टहल सदा किया करें। मेरे मित्रों, मेरा एक प्रश्न है, दाऊद तू पहली ही बार में वाचा का संदूक विधिवत क्यों नहीं लाया? जी हाँ, तुझे उस दुखद अनुभव की क्या आवश्यकता थी? मित्रों ध्यान दीजिए कि इसी प्रकार हम में से अधिकांश जन शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह पुरानी कहावत सही है, अनुदृष्टि दूरदर्शिता से उत्तम है। मेरे लिए दाऊद पर उंगली उठाना और कहना कि उसे पहली बार में ही विधिवत काम करना था और फिर मैं ही पहला कदम गलत उठाता हूँ, इसके बाद मुझे परमेश्वर की विधि सीखनी पड़ती है, मेरे विचार में हम में से अधिकांश का यही अनुभव है। कई बार हम लोगों को उंगली उठाते हैं, दूसरों को मार्ग दिखाते हैं, लेकिन स्वयं को हम नहीं देखते, जबकि मुझे और आपको स्वयं अनुभव करना चाहिए एवं सीखना चाहिए। पहले इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, तब दाऊद ने सब इसराइलियों को यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा किया कि यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचाए जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। हम अब प्रार्थना करके निर्णय नहीं लेते हैं, हम अपने बुद्धि के सहारे पर निर्णय लेते हैं, और हम देख चुके हैं कि हमारे बुद्धि के निर्णय ऐसे मूर्खता से भरे होते हैं जैसे बच्चों के निर्णय हो, परंतु हम अपनी विधि बदलना ही नहीं चाहते हैं। मेरे मित्रों, दाऊद ने सोचा कि यह महत्वपूर्ण है कि वाचा लाने के लिए संपूर्ण इसराइल को एकत्र किया जाए, और परमेश्वर ने भी इसे महत्वपूर्ण समझा। यही कारण है कि उसने इसे इतिहास की पुस्तक में लिपिबद्ध किया, जो इस ऐतिहासिक युग के प्रति उसका दृष्टिकोण है। इस बार दाऊद वाचा के संदूक को बड़ी विधिवत तरीके से लाता है। पहले इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए दाऊद ने हारून के संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दाऊद ने प्रत्येक परिवार के प्रधान और सदस्यों को वाचा का संदूक लाने का उत्तरदायित्व सौंपा। पहले इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय उसके 11 और 12 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब दाऊद ने सादोक और एब्यातर नाम याजकों को और उरियेल, असाया, योएल, शमायाह, एलियेल और अबिनादाब नाम लेवियों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम तो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इसराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है। मेरे मित्रों, दाऊद ने वाचा के संदूक के लिए स्थान तैयार किया था, परंतु हमें नहीं बताया गया कि कहां, क्या वह किसी का खलिहान था जिसे उसने खरीद कर मंदिर के लिए नियुक्त किया था। यह पर्वत मोरिया पर था जहां अब्राहम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने की तैयारी की थी। मेरे प्रियो, यह सकरी पर्वतमाला यरूशलेम के मध्य से निकल रही है। यीशु का क्रूसीकरण स्थल गुलगुता इसी पर्वतमाला पर स्थित है। मेरे विचार में तो दाऊद ने जो स्थान वाचा के संदूक के लिए तैयार किया था वह पर्वत मोरिया पर ही था। जी हाँ, आइए हम आगे पढ़ेंगे। पहले इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय के 13 पद में लिखा है, क्योंकि पहली बार तुमने उसको न उठाया, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। ध्यान दीजिए, आपको स्मरण होगा कि पहले तो दाऊद ने परमेश्वर को दोष दिया कि उज्जा को मार डालने में परमेश्वर न्याय सम्मत नहीं था, परंतु बाद में उसे यह बोध हुआ कि वह ही गलत है, अतः वह इसका अंगीकार करता है। क्या आपने ध्यान दिया कि इसराइल के परमेश्वर का संदूक अभिव्यक्ति बार बार दोहराई जा रही है? इससे स्पष्ट होता है कि वाचा का संदूक परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहले इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय उसके 15 पद में हम आगे पढ़ते हैं, तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया। जी हाँ, वह गिनती अध्याय 4 में व्यक्त परमेश्वर के स्पष्ट निर्देशों को संदर्भित कर रहा है। हम जानते हैं कि दाऊद संगीतकार था और वह यहाँ पूरी तरह संगीत भी चाहता था। हम पहले इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय के 16 पद में पढ़ते हैं, और दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि अपने भाई गवैयों को बाजे अर्थात सारंगी, वीणा और झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करें। दाऊद पूरी गायन मंडली और वाद्य यंत्रों के साथ वाचा के संदूक को यरूशलेम लाना चाहता था। वह एक ऐतिहासिक दिन था। जी हाँ, दाऊद द्वारा यरूशलेम प्रवेश की एक महान घटना थी। परमेश्वर दाऊद द्वारा यबूसियों से यरूशलेम जीत लेने को और आवासीय परियोजनाओं को नहीं लिखता है। परमेश्वर आत्मिक बातों को महत्व देता है, और मैं आशा करता हूं कि आपको संदेश मिल गया होगा कि परमेश्वर आपसे भी क्या चाहता है। पहले इतिहास के पुस्तक 15 अध्याय उसके 25 पद में हम पढ़ते हैं, और दाऊद और इसराइलियों के पुरनियों और सहस्त्रपति सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर से आनंद के साथ ले आने के लिए गए। जी हाँ, वह एक महान दिन था। तब हम आगे पढ़ते हैं पहले इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय के 26 पद में, जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, तब उन्होंने 7 बैल और 7 मेढ़े बलि किए। ये सब बलिदान यीशु की ओर संकेत करते हैं। तब आगे लिखा है पहला इतिहास के पुस्तक 15 अध्याय के 27 से 28 पद में, दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले सब लेविये और गाने वालों के साथ राग उठाने वाले का प्रधान कनन्या, ये सब तो सन के कपड़े के बागे पहने थे, और दाऊद सन के कपड़े का एपोद पहने हुए था। इस प्रकार सब इसराइली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे, तुरहियां और झांझ बजाते और सारंगियां और वीणा बजाते हुए ले चले। मेरे प्रियो, यह कैसा महान दिन था। मेरे मित्रों, कई बार हम कलीसिया में ऑर्केस्ट्रा देखना चाहते हैं, परंतु कलीसिया में कभी ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पाता है। मेरे विचार में प्रभु नहीं चाहता था कि हम इस प्रकार के सौभाग्य को देखें, और मेरी समझ में कलीसिया के मृतक होने का और संसार द्वारा उसे अनदेखा किए जाने का मुख्य कारण है कि वहां आनंद का प्रमाण नहीं है। आज विश्वासियों को आराधना में जाना देखें, क्या उनके चेहरों पर आनंद दिखाई देता है? क्या आप उन्हें खुशी से जाते हुए देखते हैं? मेरे प्रियो, किसी खेल के मैदान में खिलाड़ियों को देखें, क्या वे दुखी दिखाई देते हैं? यहां तक कि हारने वाले भी निराश नहीं दिखते हैं, वे सब आनंद लेते हैं। दुख की बात तो यह है कि परमेश्वर के लोग आनंद नहीं मनाते हैं। हमें आनंद मनाना चाहिए। मेरे विचार में उस समय के संसार में यह समाचार था कि दाऊद वाचा का संदूक यरूशलेम ला रहा था, और मेरे विचार में वहां अन्य जातियों के आगंतुक भी थे जिन्होंने घर जाकर कहा होगा, आपको मेरे साथ यरूशलेम में होना था। जी हाँ, वह एक महान दिवस था, एक परमानंद का दिवस था। क्या आपने ध्यान दिया कि समाचार पत्रों में और टीवी पर कभी ऐसा समाचार नहीं होता है जो आत्मिक हो या जिसमें मसीह का आनंद हो? वहां यदि है तो धर्म के विषय कोई असंगत बात या कोई वेढंग की धर्मी मनुष्य वाली बातें होती है। तथापि हम देखते हैं कि इस उत्सव में दाऊद के साथ सब नहीं थे। पहले इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय के 29 पद में लिखा है, जो इस अध्याय का आखिरी पद है। जब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को कूदते और खेलते हुए देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। जी हाँ, शाऊल की पुत्री मीकल दाऊद की पहली पत्नी थी। उसने दाऊद को परमेश्वर की सेवा का जोश और आनंद देखा तो सोचा कि वह एक धार्मिक अतिवादी है। ओह, आज हमें दाऊद जैसे मनुष्यों की कैसी आवश्यकता है। धर्मान तो नहीं, परंतु हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर के जनों के मन और जीवन से आनंद की नदियां बह रही हो। यह अध्याय 15 का महान संदेश है। मेरे मित्रों, वाचा का संदूक यथा स्थान स्थापित किया गया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अध्याय 15 समाप्त होता है, और अब हम अध्याय 16 में देखेंगे कि वाचा का संदूक दाऊद द्वारा तैयार किए गए तंबू में रखा गया और दाऊद उसकी अनंत देख रेख की व्यवस्था करता है। तो आइए हम पढ़ें। पहले इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय उसके 1-3 पद में लिखा है, तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया, और उसने क्या पुरुष क्या स्त्री सब इसराइलियों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। मेरे मित्रों, इसराइल की प्रजा के लिए यह समय महान आनंद का अवसर था। उसने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। हमने लय व्यवस्था के पुस्तक में अध्ययन किया था और देखा था कि होम बलि प्रतीक है परमेश्वर मसीह में क्या देखता है। होम बलि परमेश्वर की उपस्थिति में ऊपर जाती है। वे मेल बलि भी चढ़ाते थे, और मेल बलि दर्शाती है कि मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर शांति स्थापित की। हम जब मसीह के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तब परमेश्वर और हमारे मध्य सब उचित होता है। मसीह के मनुष्यत्व का महिमान्वन और उसके द्वारा अपना लहू बहाने का सच यहाँ पुराने नियम में उपस्थित सुसमाचार है। मेरे मित्रों, हम पहला इतिहास उसके 16 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं, तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करें, और इसराइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और उसकी स्तुति किया करें। जी हाँ, हमें परमेश्वर के वचन में ऐसा मग्न होना चाहिए कि हम जोश से भर जाएं। किसी खेल का उत्साही उसका प्रेमी कहलाता है, परंतु धर्म का उत्साही अंधा कहलाता है, धर्मांध। अस्तु, हमें धर्मांधों की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें ऐसे विश्वासियों की आवश्यकता तो है जो परमेश्वर के वचन में ऐसे मग्न हो जाएं कि वे प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद एवं स्तुति करने की मनोकामना जाग उठाएं। मेरे मित्रों, दाऊद ने इसकी व्यवस्था की, और असाफ मुख्य संगीतकार का, उसके बाद जकरिया, उसके बाद गायकों की एक लंबी सूची है। ओह, संगीतकारों का यह कैसा समूह है। अब हम दाऊद का महिमामय भजन को देखते हैं जो आभार व्यक्ति का है। आइए हम देखें पहला इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय उसके 7 पद में, तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाप और उसके भाइयों को सौंप दिया। मेरे मित्रों, हम इसे फिर देखेंगे क्योंकि यह भजन 105 में है। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के बारे में चर्चा करके उसके वचन को फैलाना है। आज दुर्भाग्य से विश्वासी टीवी पर दर्शाए गए विज्ञापनों के बारे में परमेश्वर के वचन से अधिक जानते हैं। हमारे प्रचारक भी बाइबल से अधिक क्रिकेट की जानकारी को रखते हैं। यह कंप्यूटर का युग है। हम सब संकीर्ण रूप में ढाले जा रहे हैं। मेरे मित्रों, प्रभु के नाम में वचन को जाने और मसीही स्वतंत्रता को ग्रहण करें। आप किसी बंधन में बंधते न चले जाएं। पहले इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। जी हाँ, परमेश्वर पूर्व काल में क्रियाशील था, वह आज भी क्रियाशील है। उसने इस अकिंचन संसार को त्याग नहीं दिया है। उसका हाथ आज भी संसार की गतिविधियों में देखा जा सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आज आप परमेश्वर के दृष्टि में पाए जाते हैं? क्या आप उस ओर बढ़ रहे हैं? शायद नहीं। आज मेरे लिए और आपके लिए एक समय है कि आइए हम सब मिलकर के परमेश्वर की निकटता में आए और उसके वचन के प्रकाशन में अपने आप को झांक करके देखें और इस बात को मान लें और कहें, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। जी हाँ, आज परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप उसके वचनों का प्रचार करें, आप उससे प्रेम करें, वह आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आशीष को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी बहुताय से सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
कहीं संग